તારીખ 20/12/1996, શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન, પ્રશ્ન 95, 96 અને 97 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 61.
पुरुषार्थ ज्यादा हो तो अभवी नहीं होता, क्या ठीक बात है? जिसका पुरुषार्थ तेज हो वो जीव अभी अभवी नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? यानी भवी अभवी का कोई इस प्रकार से देखा जाता है क्या? कैसे भवी अभवी को कैसे समझे, पुरुषार्थ के दौरान या कोई दूसरी बात है, वो प्रश्न किया है। समाधान है कि जिसको आत्मा के प्रति रुचि होती है वो अभवी नहीं होता, और पुरुषार्थ तो रुचि के बाद का स्टेज है, रुचि अनुयायी विरिय। तो जिसको आत्मा की रुचि हो वो अभवी हो वो तो बन ही नहीं सकता। क्यों? कि अभवी को आत्मा की रुचि नहीं होती, अभवी को अनात्मा की रुचि उतनी है कि इसके कारण से आत्मा की रुचि कभी उसको होती नहीं। अनात्मा की रुचि में राग की रुचि, चाहे शुभ राग की हो और संसार के पदार्थों की, देहादि सामग्री की, गुरुदेव ने इतना समझाया कि शुभाशुभ भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वभाव की रुचि की बात है। यहाँ शुभाशुभ भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए शुभ शुभ की रुचि है वो आत्मा की रुचि नहीं है। यह अंतर से जिसको बैठे और जिसको आत्मा की रुचि लगे तो वह अभवी नहीं होता। अंतर से ऐसा बैठ जाए कि शुभ शुभ भाव है वो आत्म स्वभाव है ही नहीं, और फिर आत्मा की मैंने स्वभाव की रुचि लगे वो अभवी नहीं होता। तो रुचि का महत्व बहुत है, जो भी चर्चा चली है इन दिनों में उसमें रुचि की बात काफी चली है। छन्न यह जीव बहुत बार समवसरण में जाके आया फिर भी सम्यक दर्शन नहीं पाया, तो इसका कारण क्या? समवसरण में धर्म प्राप्ति के का बहुत वातावरण होता है, एनवायरनमेंट पूरा धर्म प्राप्ति का होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सजीवन मूर्ति साक्षात परमात्मा जिनेन्द्र देव विराजमान होते हैं और बहुत से मुनिराज होते हैं, बहुत से मैंने बहुत से लाखों सम्यक दृष्टि तो बहुत से होते हैं, इससे भी भले ही मिथ्या दृष्टि की संख्या सबसे अधिक है, फिर भी धर्म का एनवायरनमेंट पूरा वातावरण जमा हुआ रहता है वहां। और भगवान की वाणी जब बंद रहती है तो आपस में धर्म चर्चाएं बहुत चलती है, मुनिराजों की, धर्मियों के आपस में बहुत चलती है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग अनंत बार जाके वापिस आए कुछ लिए बिना, धर्म प्राप्ति किए बिना, तो क्या कारण होगा? ऐसा नहीं हुआ कि भगवान की पूजा भक्ति नहीं किया, वो भी बहुत किया, बहुत मैंने बहुत बहुत किया पूजा भक्ति, बहुत बहुत किया, क्योंकि सब बहुत करते हैं तो सामान्य जीव तो जुड़ जाते हैं, जो भी प्रवाह चलता है उसमें सब जुड़ जाते हैं, यहाँ भी जुड़ जाते हैं प्रवाह में, संप्रदाय में जुड़ जाते हैं, तो वहां तो बहुत वातावरण है ऐसा, तो ये भी बहुत किया है फिर भी धर्म प्राप्ति नहीं किया है, क्या कारण हुआ होगा? समाधान, जीव ने अंतर से भगवान को पहचाना नहीं, क्या क्या बात लिया, पहचान की बात लिया है, सजीवन मूर्ति की पहचान नहीं किया अंतर से, सम्यक की पहचान नहीं की, सर्वज्ञ रूप से तो पहचान करना बहुत मुश्किल है, सर्वज्ञता का वो पहचानना या शुक्ल ध्यान को पहचानना, तो आखिरी शुक्ल ध्यान महावर्तता है चौथे नंबर का, उसको पहचान तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो बहुत सूक्ष्म अवस्थाएं होती है, इसके आगे सम्यक्त्व है वो स्थूल है, ऐसे तो सम्यक्त्व भी बहुत सूक्ष्म है लेकिन इसके आगे तो सम्यक्त्व के रूप में भी नहीं पहचाना है, वो कृपालु जी एक चिट्ठी में लिखते हैं ना
जी,
सम्यक्त्व के रूप में भी
नहीं पहचाना,
क्योंकि वो अंतरंग चीज है, तो अंतर से नहीं पहचाना, बाहर से दिखते हैं, देखो कोई विषय कषाय की प्रवृत्ति भगवान को नहीं है, हमारे जिनेश्वर परमात्मा को कोई विषय कषाय की प्रवृत्ति नहीं है, खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, नींद भी नहीं है, हाँ टट्टी पेशाब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्वतंत्र मानते ऐसा कुछ नहीं है, खाना पीना टट्टी पेशाब रूप मानते हैं ऐसा कुछ
नहीं
है, नहीं है। केवल ध्यान में, केवल ज्ञान में, केवल ध्यान में, केवल दर्शन में, केवल विरज में, ऐसे ही परिपूर्ण, केवल मैंने परिपूर्ण परिपूर्ण रूप से विराजमान है, और वो बाह्य से दिखता है, ध्यानादि बाह्य से दिखता है, लेकिन बाह्य से पहचान नहीं होती, पहचान होती है तो अंतर से होती है, तो क्या क्या कहा कि अंतर से भगवान को पहचाना नहीं, ओग संज्ञा से माना कि ये हमारे भगवान है, वितराग है, जिनेश्वर देव है, सर्वज्ञ है, इसलिए पूजा भक्ति करते हैं, जैसे आप भी करते हैं मंदिर में जाके ऊपर से मैंने ओग संज्ञा से किया बहुत है, भक्ति पूजा घंटों तक किया बहुत है, थक जाए माँ तक किया है, पूजा करते करते भक्ति करते करते थक जाए, इतने घंटे किया है, और कृत्रिमता में तो थकान लगे ही लगेगी, वो स्वभाव थोड़ी ना है, वो पूजा भक्ति करना वो कोई आत्मा का स्वभाव
नहीं
है, तो थक तो जाएगा,
પ્રત્યક્ષ
અને પરોક્ષ બે વાત લીધી છે, 504 છે,
પ્રગટ કારણ અવલંબી વિચાર
કોઈ પ્રગટ કારણ ને અવલંબી પરોક્ષ ચાલ્યા આવતા સર્વજ્ઞા ને પ્રગટ કારણ ને અવલંબી ને માને ક્યાં કે શાસ્ત્ર સે વર્ણન સુનને કો મિલે યા ભગવાન કી જિન પ્રતિમા દેખને કો મિલે तो वो प्रत्यक्ष मां सर्वज्ञ नहीं है, जो परोक्ष सर्वज्ञ चला चले आए हैं उनकी प्रतिकृति है और उनका वर्णन है, शास्त्र में उसका वर्णन है और मंदिर जी में प्रतिमा में उसकी प्रतिकृति है। ऐसे पुरुष को मात्र सम्यक दृष्टि पने भी पहचान हो जाए तो उसका फल बहुत है, बहुत है। तो उसमें क्या है कि जो संस्कारी जीव है तो उसको तो परोक्षता से भी पहचान आ जाती है, भगवान का दर्शन करते ही उसको पहचान आ जाएगी या शास्त्र सुनते भी उसको पहचान आ जाएगी। वो बात तो परोक्षता की रही है। अब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सर्वज्ञ पुरुष को भी कोई कारण से, कोई विचार से, कोई अवलंबन से सम्यक दृष्टि स्वरूप रूप से भी न जाना हो तो उसका आत्म प्रत्ययी फल कुछ नहीं है, यानी आत्म लाभ होए ऐसा फल कुछ नहीं है। तो उसमें क्या कहे कि किसी कारण से मैंने पुण्य योग के कारण से प्रत्यक्ष योग मिल गया
सर्वज्ञ परमात्मा को।
इतना पुण्य नहीं हुआ तो समोसर में पहुंचेगा कहाँ से, और वहां कुछ विचार में आया है कि ये क्या सर्वज्ञ माने क्या, अभी तक सम्यक दृष्टि माने क्या और अवलंबने मैंने जिसकी पहचान होती है उसका कुछ आधार मिलता है तो पहचान होती है। जैसे ज्ञान लक्षण के आधार से ज्ञान स्वभाव का प्राप्ति हुई तो वहां अवलंबन आया, इसलिए आधार आधे की बात लिया कि पर्याय आधार है स्वभाव आधे है, अवलंबन में आधार मिलता है। तो वहां बाह्य में भी पहचान में एक आधार मिलता है, कोई सिम्टम का अवलंबन मिलता है, तब वो सिम्टम क्या है कि सम्यक्त्व। इसलिए तो सम्यक का प्रकरण चालू किया है
जी,
स्वाध्याय में सम्यक्त्व का प्रकरण नोट कराते हैं ना, उसी कारण से कराते हैं कि इस पर विस्तार से कुछ बातें चलेगी, फिर जब वो प्रकरण हाथ में लेंगे तो विस्तार से उस विषय पर चर्चा करेंगे और फिर इसका आर्टिकल भी बन जाएगा। अभी संक्षेप में लेना हो तो उतना ले सकते हैं कि सम्यक शब्द है
जी,
वो स्वाभिमुखता को सूचित करता है,
बराबर
दिशावाचक दिशा सूचक शब्द है। क्या है
दिशा
की सूचना है उसमें और उसका वाच्य स्वाभिमुख अंतर्मुख दिशा है, वो अगर पहचान में आ जाए जैसे कैसे भी, तो उस वो पहचान में आ जाने के लिए वो सिम्टम लिखवाते हैं कि यहां से सम्यक्त्व मालूम पड़ सकता है, इस प्रकार से वैसे वैसे भावों से वैसे वैसे शब्दों से यानी वाणी से सम्यक्त्व की हमें सूचना मिलती है। तो अगर सम्यक्त्व की पहचान होगी या अंतर्मुखता की पहचान होगी, भगवान की मूर्ति में मेन चीज तो वही है, और एक बात विशेष है कि जो अंतर्मुखता है वो स्वसंवेदन से अभेद है और जो निर्विकल्प स्वसंवेदन है वो अंतर्मुखता से अभेद है। तो जिसको अंतर्मुखता दिखती है उसको स्वसंवेदन दिखता है, स्वसंवेदन दिखता है उसको अंतर्मुखता दिखती है, क्योंकि दो अलग अलग रहते नहीं। तो फैक्टर आया वेदन का,
प्रत्यक्ष का,
वेदन का फैक्टर आया। स्वसंवेदन में किसका आया? वेदन का। जिसको वेदन दिखे और वो भी प्रचुर वेदन दिखे और अंदर में वेदन नहीं आए, ऐसा नहीं बन सकता। वेदन वेदन को लाता है, चाहे पीड़ा की वेदना हो चाहे स्वसंवेदन हो। पीड़ा की वेदना, अनजाने प्राणी की पीड़ा की वेदना, तिर्यंच की भी हो, मनुष्य की क्या, देखने वाले को पीड़ा पैदा करती है। अरे रे बेचारा बहुत दुखी हो रहा है, बहुत दुखी, चिल्लाता है, चिल्लाता है, पीड़ा के मारा मारा चिल्लाता है, सहन नहीं कर सकता है, देख नहीं सकते लोग, देखने वाले को पीड़ा होती है कि नहीं। तो अनंत स्वसंवेदन को देखे सिनेश्वर परमात्मा का और परिपूर्ण निरवशेष अंतर्मुखता दिख जाए तो ये सम्यक तो है। ये सम्यक है, ये अंतर्मुखता और स्वसंवेदन का अभेद स्वरूप वही सम्यक्त्व है। देखो अंतर्मुखता का और स्वसंवेदन का अभेद स्वरूप वही सम्यक्त्व है, वही सम्यक है। इस प्रकार से अगर नहीं पहचाना हो तो उसका आत्मा के विषय में, आत्मा के प्रति कोई फल नहीं आता, चाहे कितना भी भक्ति पूजा किया हो, चाहे कितना भी समर्पण किया हो। क्या समर्पण किया कि कोई दीक्षा लेके आ जाता है अंदर, कोई भवी जीव ऐसा भी होता है अभवी नहीं आ सकता समर्पण। समर्पण उतना करे राजपाट रानियां छोड़ करके दीक्षा लेकर के भगवान के समर्पण में पहुंच जाए तो उसको कुछ लाभ होवे कि नहीं होवे, कि नहीं पहचाने तो लाभ होवे, नहीं पहचाने तो लाभ कुछ भी कर ले। ये इसका केंद्र स्थान है, पहचानना वही इसका केंद्र स्थान है, सेंटर पॉइंट। परमार्थ से उसकी सेवा की और सेवा नहीं की, जीव को कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमार्थ से दिखे तो सेवा भक्ति बहुत किया और कुछ नहीं किया, कोई फर्क नहीं, दोनों इक्वल है, बराबर है। बहुत सेवा भक्ति किया एक ने और एक ने कुछ सेवा भक्ति नहीं किया, दोनों बराबर है,
दोनों रखन
है, दोनों परमार्थ से तो बराबर में है, परमार्थ से कुछ फर्क नहीं है दोनों में। इसलिए कुछ सफल कारण रूप से इस पूजा भक्ति सेवा को ज्ञानी पुरुष ने स्वीकार नहीं किया है, ऐसा मालूम पड़ता है। सभी ज्ञानी पुरुष ने कोई उसका सफल सेवा का कोई सफल कारण स्वीकार नहीं किया है, अर्पणता का कोई सफल कारण स्वीकार नहीं किया। हाँ, मानते नहीं है कि उसको लाभ हुआ है, हाँ उसका कोई कारण स्वीकार नहीं किया है कि उसको कुछ लाभ हुआ है, उस कारण तो हुआ है कि नहीं हुआ है, कार्य भले अभी नहीं हुआ, कुछ तो कारण हुआ होगा कि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। सेवा सेवा परमार्थ से कोई फर्क नहीं है।
ऐसे सम्यक
दृष्टि को अंतर्मुखता
असम रहती है ना, अंतर्मुखता हर समय,
हाँ आंशिक रहती है, परिणति है ना, वो अंतर्मुख परिणति है। सम्यक दृष्टि को जो परिणति हो गई वो अंतर्मुख परिणति है, इसलिए हर समय रहती है।
अंतर्मुख परिणति से भाई
वेद अच्छा,
क्या है कि जीव ने अंतर से भगवान को पहचाना नहीं, इसलिए वैसा का वैसा वापस आता है। तो कोई कहे कि पूजा भक्ति इतना किया है, इतना किया है मैंने, बहुत किया है, ट्रिमेंडस किया है, ज्ञानी स्वीकार नहीं किया, तो कोई भी ज्ञानी है स्वीकार नहीं किया, ज्ञानी पुरुष ने स्वीकार नहीं किया ऐसा लिया ने, तो इसका मतलब वैसा का वैसा वापिस आया है। इसके परिणाम में यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है कृपाल देव ने, जाति भेद नहीं हुआ है, उसका सादी भाषा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, या तो जाति जाति पलट जाती, पहचानता तो जाति पलट जाती, और पहचान होने में योग्यता जरूरी ही है, दृढ़ सत्संग, दृढ़ मुमुक्षुता, मैंने मोक्षार्थी पना, परिचय परिचय सत्संग, सत्संग से परिचय, मोक्षार्थी पना, अमलीकरण का उत्साह और अंतरात्मा वृत्ति, इतने परिणाम हुए बिना पहचान किसी को होती ही नहीं है।
तो वैसे शहरी भगवान आता है ज्ञानी के प्रति, तो ज्ञानी के प्रति शहरी भगवान उछलता है,
समझ में नहीं,
पहचान हो जाए तो
फिर तो ज्ञानी के प्रति शहरी भगवान उछलता है, पहचान होने के बाद
क्या उछलता है
बहुमान,
वो तो सवाल ही पैदा नहीं, उसने भगवान को बाहर से पहचाना है कि भगवान समोसरण में विराजते हैं, जो समोसरण में विराजते हैं वही भगवान होते हैं गिंद कुटी पे, तो दूसरे केवली का क्या हुआ, उसको तो समोसरण नहीं है, समोसरण में भी कितने हरियंत हो जाते हैं, मुनि मुनि दशा में से श्रेणी लगाते हैं, तो वैसे तो जो भगवान की धर्म सभा है उसे भगवान 500 धनुष ऊंचा स्थान है, जैसे स्थान ऊंचा है सुनने वाले का और बोलने वाले का स्थान अलग अलग रहता है ना, ऊंचा नीचा, तो भगवान का स्थान 500 धनुष ऊंचा है, तीन पीठी का है, फिर ऊपर समोसरण, ऊपर कमलासन पर विराजमान रहते हैं अंतरिक्ष में, वो भी अंतरिक्ष में, कमलासन पर भी
अंतरिक्ष
में रहते हैं, तो जो भी मुनिराज केवली हो जाते हैं फटाक से वो 500 धनुष ऊंचे चले जाते हैं, वो तो आकाश में देव कमलासन की रचना कर देता है और वहाँ वो केवली विराजमान रहते हैं वहाँ, तो समोसरण में विराजमान है इसलिए भगवान है, तो केवली को कैसे क्या मानेगा, अष्ट प्रातिहार तो वो केवली को नहीं है, अष्ट प्रातिहार दूसरे केवली को नहीं है, और ऐसे ऐसे कितने केवली होते हैं, लाखों को, सिंहासन पर विराजमान है, मैंने कमलासन को, सिंहासन को बैठने का विशिष्ट प्रकार का आसन होता है, वो तो कुबेर की रचना है, देवों की छत्र चामर है, और शरीर भी शांत होने से शांत है, परिणाम शांत होने से शरीर भी शांत है, ध्यानस्थ अवस्था में है, उसने ये सब देखा, ये सब समोसरण में देखने को मिलता है, और शास्त्र में भी आता है कि जिनेश्वर देव को ऐसा ऐसा समोसरण में होता है तीर्थंकर परमात्मा को, परंतु अंतर से भगवान को पहचाना नहीं, उसके अंतरंग में क्या चलता है, अंतर्मुखता और स्वसंवेदन वो पहचाना, अनुभव प्रकाश में देव अधिकार में लिखा है
जी।
कि भगवान
उनकी प्रतिमा ना, प्रतिमा की बात चली, क्योंकि अभी तो साक्षात है नहीं, 2500 साल हो गया, अब तो प्रतिमा का सिवाय भगवान की स्वरूप को देखने का, तो जिनेश्वर का स्वरूप देखने का तो कोई दूसरा निमित्त है ही नहीं देखने का, सुनने का मिले शास्त्र से, देखने का तो प्रतिमा जी के सिवा कुछ है ही नहीं। तो वहां लिखते हैं वो कि भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते हुए ज्ञानी पुरुष इनके अनंत स्वसंवेदन को देखते हैं।
बराबर।
किसमें? प्रतिमा में। प्राण प्रतिष्ठा किया ने तो उसमें स्वसंवेदन का आरोप है, जीवंत रूप में देखते हैं, प्रतिमा के रूप में भगवान को नहीं देखते हैं, मंदिर में साक्षात जिनेश्वर विराजमान है ऐसा देखते हैं। तो उनके अनंत स्वसंवेदन को देखते हुए वो अपने स्वसंवेदन को आविर्भूत करते हैं, वो बात लिया है देवाधिकार में। इसलिए जिन प्रतिमा पूज्य है और धर्म का निमित्त है, स्वभाव का निमित्त नहीं लिया,
धर्म
का निमित्त है ऐसा लिया है। और वेद ज्ञानी को, ज्ञानी को ध्यान का भी निमित्त है, स्वरूप स्थिरता का भी निमित्त है, वो तो निरवशेष अंतर्मुक्ता में शुक्ल ध्यान में विराजमान है, ध्यान का भी निमित्त है। और मुमुक्षु को वेद ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान का निमित्त है, और ओक संज्ञा वाले को शुभ भाव का निमित्त है, उसको आगे बात चलती नहीं है। लेकिन कोई वेद ज्ञान करता है, प्रयास करता है, तो उसको निमित्त होता है। उतनी बात है उसमें। स्थापन किया है, ध्येय की मूर्ति बना के, मूर्तिमंत ध्येय करके स्थापित किया है। इसलिए ज्ञानी भी जिन मंदिर बनाते हैं और भगवान की प्रतिमा की स्थापना करते हैं, और वो स्थापना अपने ज्ञान का, जो सम्यक ज्ञान का नहीं है उसका ही विषय है, नहीं का विषय कोई निक्षेप कहते हैं, स्थापना निक्षेप है। तो जिसको नहीं है उसको निक्षेप है, जिसको नहीं है उसको निक्षेप कहाँ का है? लेकिन अभी तो ज्ञानी नहीं है तो मुमुक्षु लोग भी करते हैं, बाकी मूल में तो वो ज्ञानी का स्टेज है, मूल में तो ज्ञानी का स्टेज है, प्रतिमा बनाना, स्थापना करना। सब देखा फिर भी अंतर से भगवान को नहीं पहचाना, इसलिए वापिस आया वैसा का वैसा, ऊपर क्या ने वैसा का वैसा वापिस आया। भगवान का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, वो पहचाना नहीं। अगर सम्यक्त्व को पहचाने तो आत्मा का स्वरूप पहचानने में आ जाए, क्योंकि सर्वगुणांश वही सम्यक है। तो दो ही मुद्दा लिया, अंतर्मुखता का और स्वसंवेदन का, लेकिन सर्वगुणांश वही सम्यक है, एक गुण के को अनंत गुण का रूप होता है। तो पहचाना नहीं इसलिए वापिस आया है, क्यों वापिस आया? सम्यक दर्शन लिए बिना पहचाना नहीं, अगर पहचान लेते लेता तो वो दूसरा समकित हो गया, तो उसका तो तीसरा हो ही जाएगा, उसमें तो ज्यादा काल लगता नहीं है। अब और प्रश्न किया है 97
भगवान आचार्य हमारे देखी तो आज ये बुद्धू कर
સેવા કરી નથી, બે શબ્દ છે, सत्संग के बिना, परिचय किए बिना तो पहचान होती नहीं
जी,
और परिचय करने के बाद भी इतनी अपनी योग्यता होगी तो पहचान होगी, जो बात होगी मोक्षार्थीपना अंतरात्मा वृत्ति और अमलीकरण, तभी पहचान होगी। सत्संग तो, क्योंकि सत्संग तो समोसरण में गया तो सत्संग नहीं किया वो भी बात नहीं है, और सेवा नहीं किया वो भी बात नहीं है, तो समय सार का मुद्दा अकेला नहीं लागू पड़ता है, यहाँ से थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, वहाँ थोड़ी मोटी मोटी बात है, करण नहीं चला है ना, वहाँ तो वो सब करके आया है, समय सार सुनने वाला तो वो सब करके आया है, तो उनको वो बात नहीं बताते ऐसा लिया है, तो संक्षेप में लिया, सेवा संगति नहीं किया है, लेकिन यहाँ तो सेवा संगति आ गया, समोसरण में गया था। प्रश्न, आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार कैसे आए? समाधान, गुरुदेव ने कहा है, हम कहते हैं वैसे नहीं लेते, खाता खुला रखा है, ओपन अकाउंट, कभी भी कोई भी एंट्री डाल दो, गुरुदेव ने कहा है कि उसकी अपूर्वता अंतर में लगे, आत्मा में ही सर्वस्व है ऐसा लगे, आत्मा कोई भिन्न है, अलग है, जुदी जाति नहीं, अलग जाति का है, उसके प्रति उसकी रुचि और पुरुषार्थ जगे, और शुभाशुभ भाव में कहीं भी रुचि नहीं लगे, उसे अपना अस्तित्व का अंतर से यथार्थ स्वीकार आता है। तो वो तो बात बहुत संक्षेप में उत्तर दिया है ना, तो उसके पर लंबा चौड़ा प्रश्न उठाया है, और फिर बहुत विस्तार से उसका उत्तर भी दिया है। संक्षिप्त में क्या कहा कि उसकी अंतर में अपूर्वता लगे, वो तो पहचान आए तभी अस्तित्व ग्रहण में अपूर्वता आती है, यानी वेदन से अपना अस्तित्व का ग्रहण होता है, वेदन बिना तो होता नहीं है, क्योंकि अरूपी पदार्थ अपना स्वरूप, अरूपी पदार्थ होने से दिखने में तो आएगा नहीं, चक्षु इंद्रिय से देखने को जाए तो अपना आत्मा तो नहीं दिखेगा कहीं भी, शरीर दिखेगा लेकिन शरीर के संयोग में रहा हुआ आत्मा नहीं दिखता है, और दूसरे इंद्रिय का तो कोई काम नहीं है, तो कहां से उसका अस्तित्व, वो है इसकी मौजूदगी का पता कहां से चलता है, ज्ञान वेदन से, तो वो अपूर्वता लगे, उस वक्त क्या लगे, अपूर्वता लगे, अनंत काल में मुझे ऐसा स्वभाव मालूम पड़ा वेदन से मालूम पड़ता है, अस्तित्व मालूम पड़ता है, अपूर्व अपूर्व
जी,
वो महिमा सूचक है, क्या पहचान का अपना तो प्रकरण निर्माण दर्शन की पगडंडी में पूरा है, लेकिन उसमें मुख्य बात वो लिया है कि स्वभाव की पहचान होने वाले को, यानी अस्तित्व ग्रहण करने वाले को, अनंत महिमावंत पदार्थ होने से जितना अनंत महिमावंत है उतनी महिमा उसके ज्ञान में आती है, अनंत महिमा है, इसको अपूर्व कहते हैं एक शब्द में, घट अंतर में न समाए, समाती नहीं है अपने परिणाम में, वो महिमा समाती नहीं है, बाहर निकल जाती है। तो क्या होता है कि इतनी महिमा आती है, इतनी महिमा आती है कि इसकी धुन चढ़ जाती है, इसकी धुन में से वो बाहर निकल सकता नहीं, छूट सकता नहीं है वो, तो इसलिए वो उसकी धुन में ही रहा करता है। अंतर्मुखता तो फिर मनोवेदन संवेदन आएगा तब होगी, लेकिन अभी तो धुन पहचानने में तो अभी धुन चढ़ती है। अपूर्वता अंतर में लगे, आत्मा में ही सर्वस्व है ऐसा लगे, क्या लगे लगे आएगा, फीलिंग स्टेज है ना, ऐसा विचार में आता है, ऐसा नहीं देता है, लगता है, लगता है, अपूर्वता लगती है, सर्वस्वपना लगता है, ये मेरा सर्वस्व है, मेरी पूरी दुनिया ही यहाँ है, मेरा पूरा जगत यहाँ है, और बाहर का जो जगत है वो क्या है,
शून्य
है, वो वहां से भगवान का वचन निकला है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो न तो का न हो गया है संधि में, जगत मिथ्या तो संधि क्या, तो न आता है ना, तो जगन मिथ्या, जगत मिथ्या नहीं लेते संधि करते, तो जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत है, जगत ये दिखता है क्या, एक वो तो मिथ्या है, वो सब माया है,
दुखा है।
ये भगवान की माया है, उन लोगों ने ऐसा ले लिया, भगवान की माया है, और तू भी भगवान है, तुझे मोह होता है तो तेरी भी माया है, माया का स्थान हो गया ना, ईश्वर की माया, माया मैंने लगाओ, हाँ लगा, माया होती है ना, लगा होता है। कृपाल देव ने लिया ने, भगवान का भक्त होता है, अगर वो निर्लेप होता है तो माया देवी ने कुछ कृपा कर ली तो वहां पहुंची नहीं। क्योंकि भगवान के भक्त को माया लगती ही नहीं है, उसको माया नहीं लगती, माया लगती हो तो उसको धुन चढ़ेगी ही, धुन चढ़ेगी उसको माया लगेगी। आत्मा में ही सर्वस्व है ऐसा लगे, आत्मा कोई भिन्न अलग ही है, मैंने कोई जगत से कोई जुदी जाति का पदार्थ है, उसके प्रति रुचि और पुरुषार्थ जगे, रुचि भी इतनी जगे उतनी जगे, उसको अनन्य रुचि कहने में आती, ऐसी रुचि कभी अपूर्व रुचि कभी हुई नहीं हो, और अपने स्वरूप से अलग रह सके, अन्य रह सके, ये इस रुचि को पोषण नहीं, जैसे पतंगा को दीपक की रुचि हुई गई तो अपने जात को स्वाहा करते भी वो वहां रहना चाहता है, जल जाता है तो भी वहां रहना चाहता है, तो वहां तो जलना होगा, यहाँ तो शांत रस में डूबना होगा, अभेद होकर के शांत रस में अमृत रस में डूब जाएगा, अमृत रस में डूब जाएगा, अभेद होकर के ऐसी रुचि हो, ऐसी रुचि हो, भिन्न नहीं रह सके, एक सूक्ष्म विकल्प का भी अंतराय उनको पुसाता नहीं है, सूक्ष्म विकल्प भी अंतराय है, आत्मा का सूक्ष्म विकल्प भी अंतराय है, एक पर्दा है,
जो अपने परिणाम में रुचि को पोषण नहीं होता, ऐसे अनन्य रुचि जगे, ऐसा पुरुषार्थ जोर आए, कोई अपूर्व पराक्रम करके अपने स्वरूप में वो अभेद होता है, ऐसा पुरुषार्थ जगे और सुबह शुभ में कुछ भी कहीं भी रुचि न लगे, वो तो आकुलता रूप लगे, सूक्ष्म विकल्प भी आकुलता रूप लगे, अस्ति नास्ति दोनों लिया है, अंदर में ऐसा लगे और बाहर में सुबह शुभ में आकुलता लगे, इसलिए रुचे नहीं, आकुलता लगे वहां रुचे नहीं, कहीं भी नहीं रुचे उसको अपना अस्तित्व का अंतर से यथार्थ स्वीकार आता है, ऐसी दशा हुए उसको अपने अपना अस्तित्व का वेदन अंश से स्वीकार हो गया, विश्वास आ गया कि ऐसा ही मेरा स्वरूप है, इसलिए वहां प्रतीति शब्द का प्रयोग कर लिया है। वास्तव में प्रतीति होती है निर्विकल्प सम्यक में तीसरा संकेत में, लेकिन दूसरा संकेत में प्रतीति शब्द का प्रयोग किया है, परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास, खात्री, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, और अनुभव में आने के बाद सौ विकल्प दशा में मिलान करता है कोई जीव तो उसको अच्छी तरह मालूम पड़ता है कि जैसा मेरे भाव भाषण में पहचानने में आया था वैसा ही मेरा स्वरूप मेरे अनुभव में प्रत्यक्ष हो गया, वो परोक्ष रूप में पहचानने में आया था, अभी प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से हो गया, उसको स्वीकार कहते हैं, उसको स्वीकार कहते हैं या सम्यक्त्व का अंगभूत कारण कहने में आता है। तो कारण शब्द वहां थोड़ा हल्का सा दिखता है, तो कृपालु देव ने बोला कि ये संकीत का अंग है, ऐसी जो पहचान है अस्तित्व ग्रहण है वो संकीत का अंग है, अवयव है, ऐसा ले लिया है। कारण कार्य कहने में थोड़ा दूरी लगता है, तो नजदीक समीपता इतनी बताई, ये संकेत का अंग है।